अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। महाराज दशरथ का दरबार लगा हुआ था, चारों पुत्र खेल रहे थे द्वार पर। दरबार में एक दिन विश्वामित्र जी आए, बोले राजन ध्यान दें सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। महाराज दशरथ बोले कि गुरुदेव आज्ञा करें। विश्वामित्र जी बोले कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूं दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें। महाराज दशरथ जी से कहते हैं विश्वामित्र जी कि अगर यज्ञ करने वाले लोग उनसे युद्ध करने लगे, याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करें तो यज्ञकार सब खंडित है। फिर धन वाले ना लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। दशरथ जी बोले आप आदेश करें। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं घबराया हूं, रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे मैं लेने आया हूं। दशरथ जी कहते हैं आदेश करें आप क्या चाहते हैं मुझसे। कि तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों। पुत्र तुम्हारे राम और लक्ष्मण वो दोनों राजा हमें दे दे। विश्वामित्र ने जब ऐसे वचन कहे सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलीन। हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाणी दीन। विश्वामित्र जी के दोनों हाथ जोड़े दशरथ जी ने वो बोले कि महाराज हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान गिरे, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान गिरे। दोनों बच्चे अभी अजान हैं, कोई ज्ञान उन्हें नहीं है और रण विद्या तो वो वैसे भी नहीं जानते हैं। लो राज ताज सम्मत सेना, यह सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इंकार नहीं। मैं खुद चलूं अगर आपका आदेश हो। हे स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासक के हैं, जितने साधन शासक के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो सुत चारों चौथे पन के। कहते हैं कि वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। महाराज दशरथ जी की ये शब्द सुनकर देखें आप गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा इन शब्दों के लिए कि चौथे पन पायऊ सुत चारी बचन नहीं कहे वो बिचारी कहते हैं बड़े अच्छे शब्दों में अरे चौथे पन पायो सुत चारी देते बचन नहीं कहे वो बेचारी अब सब सुत मोहे प्राण की नाई पर राम देते नहीं बने गोसाई चारों पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं गुरुवर, लेकिन राम और लक्ष्मण तो अधिक प्राणों से प्यारे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं और कहिए। दशरथ जी बोले फिर राम सदा सुख धाम मेरा कब उसका बिरह गवारा है, जब घर का यही चांदनी है जीवन का वही सहारा है, गाध सुअन के हो गए रक्त वर्ण दोइनेन। जैसे ही शब्द सुना कि राम देत नहीं बने गोसाई, वो देते नहीं बनता है क्योंकि मेरे प्राणों से प्यारा है। दशरथ जी के ये शब्द सुने तुरंत लाल हो गए विश्वामित्र, तुरंत क्रोध के बस में हो गए, बोले गाध सुअन के हो गए लाल वर्ण कुछ नेन, ओ कहे कड़क करन पत से इस प्रकार अब बेन। बोले कि टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर दे मेरे साथ, या तो सीधा ना कर दो और नहीं तो मेरे साथ राम लक्ष्मण को भेज दो। वाह दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है, उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। दशरथ जी बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि राम देत नहीं बने गोसाई। विश्वामित्र जी बोले यदि आज विष्णु से कहता मैं तो चल देते छोड़ गरुड़ बाहन, चल देते छोड़ गरुड़ बाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन, विश्वामित्र अत्यंत क्रोधी बोले, अगर मैं विष्णु से कहता और शंकर से कहता तो उनका आसन भी हिल जाता, वो मेरे साथ चल देते, और तुमसे दो लड़के मांगे, तुम्हारे चार लड़के हैं, तुम दो नहीं दे सकते। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कर्म में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नप को समझाने लगे राजन छोड़ बिलाप। वशिष्ठ जी ने देखा कि अब तो विश्वामित्र जी का क्रोध ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो बीच में ही बोल पड़े, बोले एक बात बताएं। वही योगी राज कहते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर, तू इनसे कुछ संकोच न कर, यह बड़े विचारशील मुनि है, तू किसी बात का सोच न कर। राजन तुम बिल्कुल मत डरो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इन्हें तुम अपने पुत्र दे दो, अगर ये मांग रहे हैं। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, और फरजंद दो चंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले, अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। ले जाइए, आज से अब इनके अभिभावक आप हो गए, इनके मालिक आप हैं। इतना कह भरी सभा में ही तत्काल बुलाए राम लखन, तत्काल बुलाए राम लखन। चरणों में गाधि तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, यह फिक्रा याद रहे भगवान मेरे नाजों के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर, उम्मा से ले बरदान, और ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। दोनों राम और लक्ष्मण विश्वामित्र की सेवा में महाराज दशरथ ने उन्हें सौंप दिया और दोनों उनके पीछे पीछे चल दिए। देखिए अब प्रात काल मुनि राज से बोले, राजकुमार आप यज्ञ निर्भय करें, हम हैं पहरेदार। क्योंकि यही दशा सुनाई थी, यही परेशानी विश्वामित्र जी ने बताई थी कि निशाचर लोग हमें यज्ञ नहीं करने देते हैं, राक्षस लोग, वो अगर हम धनुष लेके उनसे लड़ते हैं तो हमारा प्रण टूटता है, तो मैं लड़ूंगा नहीं, और यज्ञ की रक्षा के लिए आप दो पुत्रों को दे दीजिए। तो जैसे ही वो उनके पहुंचे कुटीर पर, तो भगवान ने कहा, भगवान राम और लक्ष्मण बोले कि आप यज्ञ करें, हम इसकी पहरेदारी करेंगे। तो आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, असुरों का मंडल आ पहुंचा। शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। निशाचरों का दल यज्ञ बिगाड़ने के लिए तुरंत आ खड़ा हुआ, और जैसे ही खड़ा हुआ तो रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, ओ हाथों में लेकर धनुष बाण, पल भर में संघारा उनको, सबको मार दिया। धर्म स्थापन करेंगे यह ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों बिजी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। पहला अवसर था कि जब राक्षसों से मुठभेड़ हुई, यह पहली बार हुआ ऐसा, क्योंकि अभी तो बचपन में केवल खेलते रहे, धनुष विद्या सीखते रहे। अब क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्नि सर के, और मारी चिनीच को उड़ा दिया सौ योजन पार समुंदर के। मारीच को उड़ाया और सौ योजन समुंदर पार फेंक दिया उसे। वन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारो सुखी रहो, ऋषि मुख से ऐसा वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग ऊंचा, श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के चरणों में लेट गए कि ये सब आपके प्रताप से हुआ है, निशाचरों को हमने आपके प्रताप से मारा है। उन्होंने सिर पर हाथ रख दिया। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। अगले दिन एक संदेश वाहक आया, एक न्योता आया उनके लिए, विश्वामित्र जी के लिए, कि आपको महाराज मिथिलेश जनक यज्ञ कर रहे हैं धनुष यज्ञ, उस धनुष यज्ञ में आपको बुलाया है। तो समाचार सुन लगे चलने जब मुनिवर के साथ, तो प्रेम विवश चलते समय पकड़ा इनका हाथ। विश्वामित्र जी जब चलने लगे जनक के निमंत्रण के लिए, तो साथ में राम लक्ष्मण का भी हाथ पकड़ लिया कि तुम भी हमारे साथ जनक में मिथिलेशपुरी में चलो, तुम्हें भी उस धनुष यज्ञ में शामिल होना है, उनका निमंत्रण आया। चलते चलते वह जगह मिली, छाया न जहां दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी। थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई थी एक जगह रास्ते में। थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश जिसके कोहरा है, चारों दिश जिसके कोहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बेहसे विश्वामित्र, उस सुना दिया उस शिला का आधो पांत चरित्र। प्रभु ने पूछा कि भगवान गुरुवर से पूछा विश्वामित्र जी से कि ये मूर्ति पत्थर की मूर्ति यहाँ क्यों पड़ी है, कैसी पड़ी है रास्ते में, इसके ऊपर कोहरा छाया हुआ है। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा उसकी बनाई बताई, और क्या बताया भगवान राम को कि फिर कहा कभी गौतम तिय थी, अब शिला साप की मारी है, अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। विश्वामित्र जी ने कहा कि भगवान, हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, और ये श्राप के कारण गौतम ऋषि ने ही इसे श्राप देती थी कि तू पत्थर की बन जा। एक जरा से अचरज के कारण वो पत्थर की बन गई। और अब भगवान बोले, तो अब ये क्या चाहती है? इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। यह पतिता है पावन, पद दो जीवन, मृत की संजीवन दो। प्रभु, ये आपके चरणों की पदरज चाहती है, वो चूरण इसे दे दो। तो बोले, इससे क्या होगा? अब बोली, ये जरा उसके ऊपर लात तो छुआओ। हुआ छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, और पदरज लगते ही हुई गौतम नार निहाल। वो तुरंत स्त्री बन गई। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, और मन चाहा बर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। अब आगे चले, जब आगे चले अहिल्या तर गई, जैसे ही आगे बढ़े तो जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने वे चले ब्राह्मण दल के साथ। और जैसे ही पहुंचे तो बोले, मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूं कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार, किस भाग्यवान के बालक हैं। वाह, दर्शन किए, चरण रज ली। जनक जी बोले कि महाराज, ये दो बालक जो आपके साथ हैं, ये किस भाग्यवान के पुत्र हैं महाराज? इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज बन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ, बिना देह का सुध-बुध भूल गया हूं। मुनि बोले, तुमको नृपत ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में है सब रहता पास। विश्वामित्र जी बोले, जनक जी तुम ठीक कह रहे हो, इन लड़कों के बारे में जो तुमने पूछा है, दोनों हैं पुत्र अवध नृप के, है नाम राम लक्ष्मण इनका, है राम नाम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही है, किस विध से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह संघारा है, और गौतम की नार अहिल्या का पदरज से शाप निवारा है। इतने काम ये करके आए हैं, हमारी यज्ञ करवाई है, और गौतम स्त्री अहिल्या का भी उद्धार करके आए। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं, ये दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद है, तो हम इन्हें साथ में लाए हैं। दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा हो, आगे तो वही होता है जो कुछ विधना ने लिखा हो। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान और दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए, आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। गांव देखने के लिए, नगर भ्रमण के लिए जब सुबास में ठहर गए तो गुरुजी से आज्ञा ली कि गुरुजी अगर आप कहें तो ये जनक नगर हम पूरा देख आए, मिथिला पूरी घूम लें, ये कैसी है। गुरुदेव ने सोचा चलो बच्चे हैं अभी, जाओ बेटा घूम आओ देखा। दोनों भाई चल दिए तो नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुन छा गए नर नारी चहुं ओर। तो भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी गलियों कूचों में द्वारों में, गलियों कूचों में द्वारों में, सज गई दुकानें सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं देता था, कोई इत्र हार होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पर, गज गामिनी दामिनी भामिनी सीधाई छाई चौबारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अवलाएं, अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। वो जो जनकपुर की अवलाएं बधुरियां बेटियां जो देखने आईं, वो आपस में चर्चाएं करती हैं कि बहना देखो तो सही इन दोनों के रूप, ओ कोटि काम छब जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरताई, किसमें ऐसी सुंदरताई, सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर दोनों भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वो आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता के श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया आजन्म इन्हीं को गाएगा, आजन्म इन्हीं को गाएगा। जिस मन में ये आ जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशल वासी हैं सुत हैं दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण वस सिया स्वयंवर के। ये आपस में महिलाएं चर्चा कर रही हैं, जनकपुर की महिलाएं कहती हैं सखी, ताड़ का सुबाहु संघारे हैं। ये वही हैं जिन्होंने ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को एक बिना फण का बाण मार दिया तो बोली 100 योजन पार समुद्र के उस पार गिरा वो। ताड़ का सुबाहु संगारे हैं, मुनिवर के मख की रक्षा कर, मुनिवर के मख की रक्षा कर, फिर बड़े पतित पावन है ये तारी है शिला अहिल्या कर, तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार के हे सीता के योग बर श्यामल राजकुमार। बोली एक बोली यार एक बात है, अपनी सीता जी के योग यही बर है जो सांवला सांवला है, बड़ा है लगता है। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो, इस जोड़ी पर बलिहारी हो, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो, संबंध यहां हो जाने से यह यहां आएंगे कभी कभी, कभी ना कभी तो आएंगे, और फिर तो अपने हैं धन्य भाग हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवाकर माथ, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ, क्योंकि नगर भ्रमण कर रहे थे तो जो भी लगा वो पीछे लग गया। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर फिर देखा, संपूर्ण नगर फिर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा, शिक्षा विद्यालय शिल्पालय शस्त्रालय राजभवन देखा, प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। ये देखने गए थे वो, ये नगर भ्रमण हुआ। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, बालक गण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते, कुछ करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन भी किया, जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया, और ये लोग भी सो गए। लौट आए, नगर भ्रमण किया, देखा प्रात काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार, और पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार, क्योंकि विश्वामित्र जी को पूजा के लिए फूलों की आवश्यकता थी, तो पुष्प लेने के लिए महाराज जनक के ही बगीचे में जहां पूरी पुष्प वाटिका थी उस उपवन में ये पहुंचे। तो श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी, रहती नित्य आवश्यकता थी, हो हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यह भी इच्छा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में, माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए चतुर सुजान। एक बात मैं कहते कहते छोड़ गया, उसे और सुन लीजिए कि जनक नंदिनी क्या है। महारानी सिया, मां जगदम्बा, भवानी, जगत जननी। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित तो होता था, जब देश प्रपीड़ित तो होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। जनकपुरी में एक बार अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो ऐसा मुनिवरों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने, संतों ने ऐसा कहा कि अगर राजा जनक स्वयं सोने का हल इस धरती में चलाएं तो पानी बरसेगा। राजा ने हल चलाया, जब हल जोता उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। तो जो हल जोता गया तो हल की जो नोक होती है उस नोक में एक घड़ा विद गया, और घड़ा जैसी ऊपर आया तो देखा उस घड़े में एक कन्या रखी थी। वाह जगत जननी माँ जानकी। तो यार ऋषियों के रुधिरों से बन खल संघारण दुर्गा निकली, खल संघारण दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जन्या निकली, उस समय वो लड़की जैसे ही वो कन्या वहां से निकली तो अब हल जोतना छोड़ दिया, पहले उस कन्या को उठाया जनक जी ने। और वो समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रगटी थी हल फारे द्वारा। जो हल का फार होता है वो फार ही सीता कहलाता है, तो सीता इसलिए नाम पड़ गया। और जनक जी ने चूंकि पहली बार जानकी कह दिया तो जानकी नाम हो गया। ये सीता जी का जन्म है, कि जन्म सीता जी का वहां हुआ। ज्यों ज्यों ये बढ़ने लगी बढ़ने लगा प्रताप, और खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। जनक राज में, जनक जी के महलों में एक शंकर जी का धनुष रखा था, जैसे कोई उठा नहीं पाता था, कोई बलवान नहीं उठा सकता था, जनक जी स्वयं नहीं उठा पाते थे। अचानक एक दिन खेल खेल में जानकी जी गई और वो धनुष उन्होंने उठा लिया। जब धनुष उठा लिया उसके नीचे बराबर लीपा पोता चौक पूरा, और फिर धनुष को रख दिया। ये देख लिया जनक जी ने, जनक जी को बड़ा अचंभा हुआ कि ये धनुष आज तक कोई नहीं उठा पाया और जानकी ने धनुष उठा लिया। इसीलिए मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, और उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। जिस समय सीता जी ने वो धनुष उठा लिया था उसी समय मिथिलेश्वर ने, जनक जी ने यह प्रतिज्ञा की थी क्या, कि इसने तो धनुष उठाया है अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा। ये प्रतिज्ञा थी, इसीलिए वो धनुष यज्ञ रखा गया था जिसमें विश्वामित्र जी राम लखन के साथ निमंत्रण में गए हुए थे। वही धनुष यज्ञ था कि जो धनुष को तोड़ देगा सीता उसी के साथ ब्याही जाएगी, वही मेरा दामाद होगा। ये बात जनक जी की थी, उनकी प्रतिज्ञा थी। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, और इस अवसर ही को गाधी सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। गाधी सुवन विश्वामित्र जी महाराज, गाधी के लड़के गाधी सुवन। तो जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ ये अकस्मात, सीता भी आई तभी सब सखियों के साथ। जैसे ही राम और लक्ष्मण उस बगीचे में फूल तोड़ने पहुंचे और उसी समय सीता जी भी सहेलियों के साथ वहां आ गई। वाह, जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भात बेजनक नंदिनी सखियों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। अब थी एक सखी चंचला बहुत, सैलानी और मन चली सी थी, उसके जिम्मे कुछ काम ना था, फिरती वहां वो बावली सी थी, पागल जैसी घूमती थी। तब जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल दियो हल व्याकुल, अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी के बावली होकर वह। जैसे ही सीता जी के नजदीक आई, जानकी जी ने कहा, जगत जननी माता ने कि तू पागल सी क्यों है भाई, क्या बात है, तेरे को हुआ क्या है, तू कुछ बोल तो, क्यों नहीं बोल रही है, ऐसी चुपचाप क्या देख रही है, घूर के क्या देख रही है, बोल जरा क्या हाल हुआ तेरा। राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। वह बोली, मैं क्या कहूं अपने जी का हाल, और शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल, कि मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है, कुछ रोग ना कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूं वह उस डाली का माली है। पहेलियां सी बुझा रही हो, बोली नहीं, बांटिए प्रसाद भवानी का, मन वांछित बेला आई है, मन वांछित बेला आई है, समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कुछ उत्तेजित हो गई। जानकी जी ने कहा कि तू कैसी पागल है, कैसी पहेलियां बुझा रही है, सही सही नहीं बताती कि भाई हुआ क्या है, तूने देखा किसे है, कौन सा माली है वो। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रकुटी मरोड़, अप्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमि का छोड़। ये भूमि का मत बना भाई, जो कहना जल्दी कहे, क्योंकि मैं भी उत्तेजित हूं सुनने के लिए कि तूने देखा किसे है। सखी हंसी कहने लगी कि बिन देखे ये हाल, कहती हूं देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। वो बोली कि जब बगैर देखे तुम्हारा ये हाल है तो मैं तो देख के आई हूं, अब सुनो छाती के ऊपर बिल्कुल हाथ रख लो, फिर मेरी बात को सुनो जानकी जी मैं क्या कह रही हूं। कि दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुध बुध खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिहा बतला सकती है उस जिहा के हैं नैन नहीं, ओ जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिहा या बेन नहीं। जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जीव नहीं है कि बता देते, और जिस जो जीव बता सकती है सो उसके नैन नहीं है क्योंकि उसने देखा नहीं। देखें आप जरा कितनी बढ़िया बात है, कहती है कि जिस सांचे ने ढाला उनको वह उन्हें बनाकर टूट गया, मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया, निश्चय ये समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, ले आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। इतना कह के वो सखी बोली, बावली सी चंचला थी, बोली चलो मेरे साथ जानकी जी, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूं। जैसे ही जानकी जी चलने लगी तो लता और सीता चली सब सखियों के साथ, और नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। जब उन नूपुरों की धुन सुनी रुंझुन रुंझुन, तो रघुनाथ जी बोले लक्ष्मण जी से कि हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमलों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है, दुंदु भी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता जाता है। प्रभु बोले, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण, क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। कि जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता यह मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, और जो नयन नजीले रहे सदा बे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण बोले कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान बोले कि लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। दिखाई दे गई लता की ओट में जरा सी झलक, जनक नंदिनी की पड़ गई भगवान राम को। तो रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर एक टक रह गए चकोर हुए। जैसे ही देखा प्रभु ने, एक नजर मिली तो वो चकोर की तरह, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह से भगवान बिल्कुल जैसी वो मुखमंडल देखा जनक नंदिनी का, तो प्रभु के नेत्र चकोर बनकर उसी तरफ एक टकी लगाए देखने लगे। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खिंचकर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान राघवेंद्र सरकार, अपनी उम्र और वैदेही का सौंदर्य जब ये देखा, अपनी मानवता को बिल्कुल अपनी बराबरी पर लिए हुए लक्ष्मण से बोले, लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, हे तो स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। बोले लक्ष्मण, मुझे लगता जैसे वैदेही यही हो। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है, इसका ही महामहोत्सव है।
यह चमत्कार जो विविध यहाँ वह सब इसका ही देव है।
अब ये दशा थी राम जी की। उधर मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार द्रग दोनों सूरज मुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल काया लोक देख सुध बिसरी राजकुमारी को, सुध बिसरी राजकुमारी को। सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां श्री जनक दुलारी, क्या प्रेम महाविद्यालय का। वो सखी बोली जो बावली थी, वो बोली अरे ये क्या हो गया भैया, एक तरफ देखते हो या क्या कर रही हो, कुछ समझ में नहीं आता। वो सखी बोली का ए जानकी जी, क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ। मंगलाचार ही में सजनी इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो। जानकी जी ने कहा चुप रहो यार, तुम इस तरह से परेशान मत करो सखी, क्यों परेशान कर रही हो, मैं तो देख रही हूं दर्शन कर रही हूं, वो जाने कैसा लगता है। लतावोट से उस समय प्रकटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। बोली फिर देख लो, वो फिर आ गए लता की ओट से सामने आ गए, और देख लो अब लोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, आनंद भरे अनुराग भरे। लज्जा लगाओ लावण्य लाभ लालित लाल माला जो है, गिरजा पूजने के लिए आई थी पुष्प वाटिका में और इधर लग गई इस काम में। तब गिरजा दर्शन पर गया सीता जी का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में होठों पर था गान। जग जननी स्वीकारिए ये कर माला आज, और रखी माता समय पर बरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, ज्यों त्यों पहनाई जब ही खिसक गई वह माल। लेकिन गिरजा माँ पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया कि हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा ऐसी आशीष हमारी है।